आगे देखेंगे आयत नंबर 52 से। فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ سُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بس آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار، خاص طور پہ جب کہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ پھر آگے سوال اٹھایا گیا، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ دَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے، پھر کس کو سنا سکتے ہیں؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، بس وہ گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل دکھائے، منکرین قیامت کو قیامت کے آنے کی بہت ساری مختلف چیزیں ثابت کروائیں، کیسے زمین مختلف مراحل سے گزر کر دوبارہ بکھرنے لگتی ہے، لیکن اتنی چیزیں سننے کے باوجود بھی کچھ لوگ نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان دو آیات میں اپنے نبی کے دل کو ڈھارس دی کہ آپ غم نہ کریں، یہ مشرق اب مردے بن چکے ہیں۔ یہاں لفظ موتا اور امی اور سما کا جو آیا ہے، یہ اپنے اصل معنوں میں نہیں، بلکہ موتا سے مراد وہ لوگ جن کے دل مر چکے ہیں، کفر اور شرک کے باعث ان کی عقل و فہم کے چراغ گل ہو چکے، کسی بات میں سنجیدہ ہی نہیں ہے، ان کو نفع اور نقصان کی خبر ہی نہیں ہے، متانت ان میں نہیں، غور و فکر کی صلاحیت دم توڑ چکی۔ پھر اسم سے مراد وہ لوگ جن کے دل کے کان بہرے ہو چکے ہیں، جنہوں نے تعصب کی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس رکھی ہیں، جنہوں نے خواہشات کے پردے اپنی آنکھوں پہ اور اپنے کانوں پہ چڑھا رکھے، ان کو حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات ہو قرآن بیان کرنے والی، کتنا اثر ہوتا کا دلوں پہ۔ ہم جیسے لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تو لوگ اپنی دنیا کی چیزوں کو ہیچ سمجھنے لگتے ہیں، جب اللہ کے نبی یہ قرآن بیان کرتے ہوں گے تو کیا دلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہوگا۔ اس کے باوجود لوگ نہیں آتے تھے، پھر بھی نہیں ان کو سمجھ آتی تھی، پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں سننا، ہم نہیں مانیں گے، پھر آ کے مخالفتیں کرتے، پھر آپ کے خلاف باتیں پھیلاتے، پھر تعصبات کی باتیں کرتے، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج، طور طریقے، معاشرے کے رواج میں رہتے، اندھی تقلید میں اتنے مگن ہو گئے کہ ان کی عقلیں بند ہو گئیں، ان کی بصیرت اندھی ہو چکی، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ دو آیتیں نا، ان کا اگر ایک لفظ میں آپ ٹاپک لکھیں نا، تو ان دلوں میں تیل نہیں، بس 100 باتوں کی ایک بات، یہ نہیں مانیں گے، ختم۔ کیونکہ جو سننا نہ چاہے اس کو کون سنائے؟ دیکھیے جو سو رہا ہے اس کو تو کوئی جگا لے گا ہلا کے، جو جاگا ہوا سویا ہوا بنا ہوا ہے اس کو کون جگائے گا؟ جو دور ہے وہ پاس جا کے آپ اس سے کچھ کہہ دیں، جو پاس ہوتے ہوئے بات نہ سننا چاہے آپ اس کو کیا سنائیں گے؟ کیونکہ اصل سننا سن کر قبول کرنا ہوتا ہے، جواب دینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اب ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اس لیے ایسے لوگ اب آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر اس آیت کو اس کے اصل معنوں میں لیں، موتاس میت کی جمع، تو پھر یہاں وہ مضمون بھی واضح ہوتا ہے کہ قبروں میں جو لوگ جا چکے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ آج بھی مسلمانوں میں سے اکثریت قبروں پہ جا کے بیچارے بزرگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اپنا کوئی بڑا سو رہا ہوگا تو سوتے ہوئے کو اٹھاتے نہیں، کہتے ہیں بے ادبی کی بات ہے، تھکا ہوا سویا ہے، پریشان ہوگا، پھر یہ ہے وہ ہے، کبھی دروازے بند کریں گے، کبھی کچھ۔ دوسری طرف بزرگوں اور بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب وہاں پہنچتے ہیں مسجد نبوی میں، تو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مرنے والوں کو آپ نہیں پکار سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ آپ نے مردوں کو سنوایا تھا، مثلاً غزوہ بدر میں جو لوگ مارے گئے وہ بدر نامی کنویں میں گئے، تو آپ نے وہاں جا کے کہا کیا تم نے اللہ کے وعدوں کو سچ پایا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مردوں سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا وہ بالکل اسی طرح باتیں سن رہے ہیں جس طرح کے تم سن رہے ہو، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ بعض لوگوں نے ان واقعات کو بنیاد بنا کر انہی آیات پر قبروں کے اوپر جا کے پیروں کو سنانا، بزرگوں کو سنانا ثابت کیا۔ میرے پاس ایک ایسی تفسیر ہے کہ 5-6 صفحوں کی تفسیر انہوں نے اس آیت پر یہ ثابت کرنے میں صرف کی ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں پہ جا کے سنا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب سنوایا تھا تو ہم کیوں نہیں سنوا سکتے۔ तो पहली बात है कि ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ सुनवाने वाली अल्लाह के नबी की कुछ बातों से मिलती है, तो वो नबी थे, हम इंसान हैं। वही नबी कह के गए कि कब्र अलग ना बनाओ, वही कह के गए मज़ार ना बनाओ, वही नबी कह के गए कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र को मेला गाह ना बना लेना, वही नबी कह के गए कि लानत की अल्लाह ने यहूद और नसारा पर कि जब भी उनका कोई नेक मरता तो ये उसकी कब्रों के ऊपर पक्की कब्र बनाते और उस पर मेले ठेले करते। ये सब कुछ भुला के लोग सिर्फ अल्लाह के नबी के चंद वाक्यात को लेकर आज अगर समाए मौता का मसला अखज़ करते हैं तो ये गलती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही चीज़ों को लेके जाने वाला बना दे। इस वक्त ज़रूरत नहीं, वरना मैं आपको तफसील के साथ वो मौजू सुनवा देती, लेकिन बात का खुलासा वही है जो हो गई। नंबर एक, जो दुनिया से गया वो गया। हम उनको सलाम पढ़ते हैं या हम मरने वाले को जाके कहते हैं सलाम अलैकुम या अहलल दियार, सलामती हो तुम पर अहले दियार, कब्र वालों। ये सही मसनून दुआ है, उसका खुलासा है जो कब्रिस्तान में जाके दुआ पढ़ी जाती है। अब कैसे वो जवाब देते हैं, उनको कैसे पहुँचते हैं, हमें नहीं पता। दैट्स इट। मैं यहाँ बोल रही हूँ, नेट पे पूरे चारों तरफ आवाज़ जा रही है, मैं पहुँचा रही हूँ, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। ये तो साइंटिफिक आलात यूज़ होते हैं ना। एक सीडी बोलती है, आवाज़ किसकी है, क्या बोलने वाला बोल रहा होता है उस वक्त? नहीं, टेक्नोलॉजी ने उसकी आवाज़ को पहुंचाया। नेट को देख लें, कंप्यूटर देखें, टीवी देखें, तो जब दुनिया में लोग एक बंदे की बोली हुई बात को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इतनी बार, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि अपने बंदों की बातें कब्रों वालों को पहुँचा ना दें। हमारे लिए इसको गैब का मामला समझते हुए ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं, क्योंकि अमूमन जो शिर्क फैलता है वो ऐसी ही चीज़ों से फैल जाता है। एक और नुक्ता काबिले गौर है, इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, पहले ही बहरे थे, पहले ही अंधे थे और अब उठ के चल भी पड़े, अब तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं। देखिए, कोई शख्स पास बैठा हो ना बहरा, चलो इशारा करें, हो सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ आपके एक्शन से बात समझ जाए, और जो वहाँ से उठ के मुंह फेर के अपनी पुश्त कर दे उसको कैसे सुनाएंगे? यहाँ तासुब के अंदर शिद्दत की बात है कि हो सकता है कि ये तासुब वाला दिल लेकर ही आपके पास बैठे रहे, एक वक्त आएगा कि कानों का मैल ख़त्म हो जाए और बात सुनने लगे, लेकिन जब इन्होंने ना सुनने की ही ठान ली है, जब इन्होंने इस चीज़ को ही अपने लिए साबित कर लिया, तो फिर छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग हैं अभी जिनको आपकी ज़रूरत है, आप उनको सुनाइए, सुनेगा तो वही, इन तुस्मिउल्ला मैयुमिनु बि आयातिना। कितना प्यार है अल्लाह को अपने उन बंदों से कि जो उसकी आयतों पर ईमान लाते हैं, जो मान जाते हैं कि अल्लाह तेरी आयतें हमें समझनी है, हमें इस पे अमल करना है। फहुम मुस्लिमून, वो यूं गर्दने झुकाए बैठे होते हैं, वो अल्लाह का हुक्म सुनने के लिए बेचैन है, वो अपनी ज़रूरियात को रोक कर भी अपने आप को बिठाए रखते हैं कि नहीं, हमने अल्लाह की बातें सुननी है, हमें अल्लाह का कलाम समझना है। ऐसे ही लोग मानेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह ताला इंसान को उसकी औकात याद दिलाते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दौफ़िन, अल्लाह ही ने तुम्हें इब्तदा में कमज़ोर पैदा किया। दौफ़ का मानी एक तो वही है जो बच्चा पैदा होता है शुरू में कितना कमज़ोर होता है, और दौफ़ से मुराद यहाँ उस मादे की तरफ इशारा है जिससे बच्चा पैदा होता है, यानी मिन नुतफ़तिन दईफ़तिन, कमज़ोर नुतफ़े से पैदा किया। और इंसान जब दुनिया में आता है तो आप सोचिए कि हाथ नहीं हिला सकता। अगर आपके घरों में छोटा बच्चा हो ना, और न्यू बॉर्न बेबी, 5 मिनट सिर्फ आप उस बच्चे को लिटा कर अपने आप को याद करें और ये आयतें सोचें कि इंसान तू कल क्या था, आज क्या है, तू कभी देख तो सही। एक बेजान कतरे से, एक बेशऊर और एक ऐसी चीज़ से इंसान दुनिया में आया कि बच्चे के ऊपर मक्खी बैठ जाए वो हिला नहीं सकता, पेट में दर्द है बता नहीं सकता, अगर उसके सर में दर्द है वो बता नहीं सकता। एक छोटा सा बच्चा इतनी कमजोरियों में से निकल कर एक बाहर आया, कल क्या हो जाएगा? सुम्म जाअला मिन बादी दुफ्फिन कुव्वा, फिर अता की तुम्हें कमजोरी के बाद कुव्वत। ये कौन सी कुव्वत है? जवानी की, जो संभाली नहीं जाती, जिसमें पाँव ही जमीन पे नहीं लगते, अकड़ इतनी है कि हर चीज़ में जब तक अल्लाह को नाराज़ ना कर ले चैन ही नहीं आता, जवानी को दीवानी कर दिया। एक कुव्वत है, सुम्म जाअला मिन बादी कुव्वतिन दौफा, फिर जुज़ोफ़ कर दिया। यहाँ देखिए कि ज़ोफ़ का लफ्ज़ 2 दफ़ा है और कुव्वत एक है। हम लोग 2 कमज़ोरियों के बीच में एक दफ़ा जवान होते हैं, पैदा होते हैं तो कमज़ोर थे, दिन ब दिन कमज़ोरी कम होती होती, फिर एक वक्त आता है कि बड़े होने लगते हैं, अब बीच में जवानी आ गई, मजबूती आ गई, इसके बाद फिर ज़ोफ, दो ब्रैकेट लगे हुए कमज़ोरियों के। आज अगर कोई बहुत सेहतमंद, बहुत जानदार सेहतमंद जवान है तो याद करे कि दूसरी तरफ चल पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद तो शैबा, फिर तो बुढ़ापा आएगा। बालों का सफ़ेद होना शैब कहते हैं। पहले तो बाल सफ़ेद होते होंगे किसी के 40, 50, 60 में, आप तो 20 साल की उम्र में ही आप देखें बालों में सफ़ेदी दिखती है। जवानों के बाल भी सफ़ेद हैं। अल्लाह ताला कहते हैं यखलुकुमा यशा, पैदा करता है जो चाहता है। वहुवल अलीमुल कदीर, और वो जानने वाला भी है और कुदरत रखने वाला है। क्या वो रब तुम्हें दुनिया में इतने मरहलों से गुजारता है तो क्या तुम अपने आप को उसके आगे बेबस पाते हो? क्या तुम समझते हो कि दुनिया में आया था तो कितना कमज़ोर था, और जब दुनिया से बंदा जाता है, किसी बूढ़े को देखे हड्डियों की मुट्ठी लगती है। किसी का मुझे बताया गया कि वो बीमार हैं और पहले सारी ज़िंदगी बड़ी धान पान सी थी, और अब बीमारी भी कुछ ऐसी लगी कि बिस्तर पे लेटी भी ऐसे लगता है कि हड्डियों की मुट्ठी पड़ी हुई है। किस बेबसी से इंसान दुनिया से जाता है? अगर बच्चे को सेहतमंद वजूद के साथ दुनिया में भेज दिया जाता तो माँ के लिए भी मुश्किल होती। मोटा बच्चा होगा तो माँ के लिए पेट में रखना मुश्किल होगा ना। इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला सेहतमंदों को अगर दूसरों के 4 लोगों के कंधे पर ले जाए तो उनके लिए भी तो मुश्किल ही होगी ना। जब लोग हमें उठाएंगे तो कहेंगे इतना वज़न था इनका, इतने मोटे थे, इतने ये फले फूले हुए थे। शायद इसीलिए अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बंदे की सारी ताकत ले लेता है कि पता ना चले कि मैं कैसा था, कोई इंसान कितना था। आपको पता है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात का बड़ा गम होता था। उनकी एक दोस्त थी, नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, तो एक दिन उनके पास बैठी हुई कहती हैं कि मुझे बहुत गम है। दोस्त ने कहा क्या बात है, आज तुम इतनी उदास क्यों? कहने लगी मुझे इस एक चीज़ ने गमज़दा कर दिया, और वो क्या कि मरने वाले के साथ ये मामला जो करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। कहा क्या मामला करते हैं? कहने लगी कि मरने वाली औरत भी होती है तो उसके ऊपर यूं चादर डाल देते हैं कि उसके जिस्म के उभार दिखते हैं, पता चलता है कि ये मैयत एक औरत की है। तो मुझे ये सोच के खौफ आता है कि मेरे जिस्म पे इस तरह चादर डलेगी तो लोगों को पता चल जाएगा मेरा जिस्म कैसा है। सोचिए गम क्या है, मौत के वक्त, शादी में जाते हुए नहीं, ईद वाले दिन नहीं, मौत के वक्त। दोस्त ने कहा कि मैं हबशा गई थी, मैंने वहाँ एक चीज़ देखी थी कि मरने वाले की चारपाई के ऊपर पहले चारों तरफ छड़ियाँ लगाते हैं, यानी ऐसी थोड़ी थोड़ी ऊंची, 1-1 फुट तकरीबन। फिर उसके अंदर जब मैयत को डालते हैं तो ऊपर चादर डाल देते हैं तो पता नहीं चलता कि मैयत कैसी है, मोटी है, पतली है, औरत है कि मर्द है। इतना ये मशवरा उनको अच्छा लगा कि हज़रत फातिमा ने ये नसीहत की कि देखो मैं तुम्हें वसीयत करती हूँ कि जब मैं मरूँगी तो मेरे साथ भी ऐसा मामला करना। यखलुकुमा यशा वहुवल अलीमुल कदीर। अगर हम सब अपनी मौत को एक दफ़ा दिन में याद कर लिया करें, काफ़ी अकड़ टूट जाएगी। हम जो दीन को भी दीन समझे होते हैं ना, वो दीन नहीं है। हमें कोई पूछे दीन क्या है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ऑफ कोर्स ये तो है, ये तो ट्रेनिंग सेशंस है छोटे छोटे दिन और रात के। असल दीन क्या है कि बंदे को अपने आगाज़ और अपने इंजाम की फ़िक्र लग जाए। ये दो लफ्ज़ हैं, हर वक्त मेरे जहन में आजकल ये जुमले रहते हैं क्योंकि मैं एक बुक पढ़ा रही हूँ तो उसमें ये चीज़ मौजूद है कि असल दीन अगर लोगों को देना है ना तो ये दीजिए, ये एहसास दे दें, ये शऊर पैदा कर दें कि तुम बाकी नहीं रहोगे, आए क्यों हो, मकसद क्या है, तुम्हारी ज़ात से इस्लाम को क्या मिल रहा है। तुमने नमाज़ पढ़ी, अपने लिए पढ़ी, शौक़ से पढ़ो। तुमने रोज़ा रखा, तुमने अपने लिए रखा, तुम बताओ तुम इस्लाम को क्या दे रहे हो, तुम इंसानियत को क्या दे रहे हो। और एक वक्त आएगा कि तुमने अल्लाह के सामने पेश होना है, फिर वहाँ जा के अल्लाह ताला इंसान के लिए क्या कुछ तैयार करेगा, कुछ मंज़र है आगे क़्यामत के बाद का। वह यौम तकुमुस्सआतु, और जिस रोज़ क़्यामत कायम होगी। युक्सिमुल मुजरिमून, कस्में उठाएंगे मुजरिम। नोट कीजिएगा लफ्ज़ मुजरिमून। मुजरिम वो होता है कि जिसका जुर्म साबित हो चुका है। क़्यामत के दिन तो वहाँ बड़ी बड़ी कचहरियाँ लगेंगी ना, बड़ी बड़ी अदालतें होंगी। वहाँ हर बंदा कोशिश करेगा कि मेरा जुर्म जाए दूसरे के सर पे चला जाए, हत्ता के बाप माँ के, बच्चों के, बीवी के। यौम यफिर्रुल मरु मिन अखी, सूरत अबस की आयतों में आता है, सूरत मारिज में आता है। उस दिन मुजरिम चाहेगा कि लो यफ्तदी मिन अजाब यौम इज़िम भी बनी, कि आज के अजाब के बदले में अपने बेटे दे दूं। अब उस दिन लोग कस्में खाकर कहेंगे मा लबिसु गैरा साअतिन, इसको हाईलाइट कर ले, ये है उनकी कसम के लफ्ज़, नहीं ठहरे वो दुनिया में मगर एक ही घड़ी। यानी फारिग वक्त में जब लोग बैठे होते हैं ना किसी जगह या इंतज़ार में होते हैं, तो अक्सर आप देखिए कि लोग बातें कर रहे होते हैं ना, ये ऐसे वो ऐसे, क़यामत के दिन ऐसे लगता है कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं ना तो बातें शुरू कर देंगे। क्या ख्याल है साथ, कितनी देर रहे हम? अब आपस में अपने दो दोस्तों के नाम लेके सोचें, कितनी देर होगी ये भले हमें यहाँ खड़े, क्या टाइम हुआ है, कितना वक्त है, अच्छा दुनिया में कितने दिन रहे। इस तरह की बातें करते करते एक एक का कसम खा के, नहीं हम तो एक घड़ी रहे, गैर साअतिन, सात से भी छोटी चीज़। कज़ालिका कानू युफकून, यूं ही वो पहले भी गलत बयानियां किया करते थे। ये मुजरिमों को दुनिया उस दिन क्या लगेगी, पलक झपकते में गुजरती हुई, इतनी जल्दी अपनी सच्चाइयां साबित करने के लिए कस्में खाएंगे कि लत थोड़ा सा तो वक्त, अभी तो समझ ही नहीं, अभी तो वक्त ही नहीं मिला समझने का और तूने बुला लिया। ये कसम इसलिए होगी कि वक्त थोड़ा था, अभी तो तेरी किताब को दे ही नहीं सके, अभी तो वो पहले पढ़ रहे थे, फिर जॉब की थी, फिर उसके बाद ज़रा और जॉब करने लग गए थे, फिर दूसरे मुल्क चले गए थे पढ़ने, और अभी उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर उसके बाद हमने अपने ऑफिसेस बना लिए, बस अल्लाह अभी तो यही कुछ किया था, तूने बुला लिया, वक्त ही नहीं दिया हमें पढ़ने का, समझने का, सीखने का। हदीस में आता है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने 60 साल की उम्र दी, उसका कोई उज़र कबूल नहीं करेगा। क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि अल्लाह को पहचाना है, अल्लाह की बात मानी, अल्लाह का दीन सीखा, नहीं, वक्त नहीं मिला, कभी ये था वो था, कहा उम्र कितनी गुजरी, 60 साल का, ले जाओ इसको वापस, ये झूठ है, इसका उज़र झूठा है, इसको 60 साल में कोई 1-2 साल भी मेरे लिए नहीं मिला, जिसमें पहले हिदायत नामे को समझता और फिर इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता। वक़ाल लज़ीना ओतुल इल्म वल ईमान, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत आयत है ये इस लिहाज से कि यहाँ इल्म और ईमान को जमा कर दिया गया, क्योंकि इल्म बिल्कुल फ़र्क चीज़ है ईमान से, हैं दो मुख्तलिफ चीज़ें लेकिन एक दूसरे के अंदर से आती हैं। कहेंगे वो लोग जिन्हें इल्म और ईमान दिया गया, किनको कहेंगे, ये मुजरिमों को, लकत लबिस तुम फी किताबिल्लाही इला यौमिल बास, नहीं बल्कि तुम ठहरे रहे हो नविश्ते इलाही के मुताबिक रोज़े हशर तक, लिहाजा फहाज़ यौमुल बासी, पस ये आ गया है यौमे मख्शर, वलाकिन नकुम कुन तुम ला तालमून, लेकिन तुम जानते ही ना थे। ये है इल्म के तोहफे, क़यामत के दिन जहाँ लोग गलत बातें करके अपने आप को मुतमईन कर रहे होंगे, तो इल्म और ईमान वाले बोलेंगे कि नहीं जनाब, आप थोड़ा नहीं रहे, आप तो रोज़े हशर तक दुनिया में मौजूद रहे हैं। उनकी झूठी बातों को गलत करेंगे। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि किसी महफिल के एंड पे कुछ खवातीन ऐसे ही बातें कर रही हैं, कोई इधर की बातें, कोई उधर की बेतुकी बातें, मसले छिड़ गए, कोई ऐसी बातें बेतुकी, और इतने में कोई साहिब इल्म एक ऐसी दलील दे देता है कि जिसके आगे सब चुप हो जाते हैं। इल्म इंसान को ईमान की तरफ लेके जाता है, और जितना ईमान ज़्यादा आता है ना, उतना अपना इल्म कम लगता है और इल्म का शौक़ बढ़ता है। आप कह लें कि ये एक दूसरे के अंदर से निकलने वाली चीज़ें हैं, बास कहते हैं कि ये इल्म वाले असल इल्म वाले हैं, बास कहते हैं ये फरिश्ते भी होंगे, लेकिन जहाँ देखा जाए तो दुनिया में वो मोमिन जो अल्लाह की मर्ज़ी को जान जाते थे और उस इल्म के बदले में उनको ईमान नसीब हो जाता था, उन्हीं की ज़ुबानों से ये बातें निकलेंगी कि लोगों तुम बहुत ज़्यादा देर रहे हो। क्योंकि आप देखिए कि दुनिया में एक सच्चा मोमिन जब ईमान के तकाज़ों के मुताबिक जीता है, तो वो गुलछड़े नहीं उड़ा सकता जो दूसरे लोग उड़ा रहे होते हैं, उसके लिए दिन बड़ा लंबा है, उसके लिए वीकेंड बहुत लंबे हैं, हाय इतना वक्त है। और जिसने सारा दिन रात बुकिंग की हुई अपनी पार्टीज़ की और फंक्शंस की, उसको लगेगा हाय गुजर गया वीकेंड, तो काफिर या मुजरिम का वीकेंड या उसकी ज़िंदगी एक वीकेंड ही होगी, हाय इतनी जल्दी गुजर गया। लेकिन मोमिन तो दिन गिन रहा होता है, कब मैं खैर और आफियत से इस दुनिया से बच के आगे चला जाऊं, वो कहेगा नहीं तुम बहुत देर रहे हो। फयौम इज़िल्ला यन्फउल्लज़ीना ज़लमू मअज़ीरतुहुम, पस उस दिन न नफ़ा देगी जालिमों को इनकी उज़र ख्वाही। वलाहुम युस्तातबून, और ना इन्हें इजाज़त होगी कि तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर लें। पीछे उज़र कर रहे थे ना कि हम तो बहुत थोड़ी देर रहे, बहुत सारे उज़र हैं ना इस दुनिया में दीन से बचने के, इल्म से रुकने के। कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों के उज़र कबूल भी नहीं होंगे और ना वो कोई तौबा कर सकेंगे, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा तो बंद हो गया। जो लफ्ज़ है युस्तातबून, ऐन ताबा से है, अतबुन कहते हैं नाराज़गी को, खिफगी, जो किसी दूसरे के बारे में दिल में पैदा हो जाती है। और ये लफ्ज़ अज़दाद में से है, ऑपोजिट मानी भी देता है। उतबा कहते हैं रज़ामंदी को, इस्तेताब कहते हैं रज़ामंदी चाहने को। हम पढ़ते हैं ना फलां पे अताब नाजिल हुआ, एक होता है अजाब, अजाब तो है पनिशमेंट, और अताब क्या है, डांट, बच्चे को मारा ये अजाब है, लेकिन हाथ दिखा के पीछे कर लिया ये अताब है, डांटना। अल्लाह सुबहाना तआला कहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में इतने मौके ज़ाया किए, अब उनको कोई एक मौका ऐसा नहीं मिलेगा कि जिससे वो अल्लाह को राज़ी कर ले। और फिर आखिरी बातें सूरत की, वलकद दरबना लिन्नासि फी हासल कुरआनी मिन कुल्ली मसल, और बेशक हमने तो बयान फरमा दी लोगों के भले के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसाल। यानी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, जिन्होंने नहीं समझा, जिन्होंने नहीं माना, इसको समझा, गौर नहीं किया, वो उनकी मर्ज़ी थी। वलइन जितहुम बिआयतिन, और अगर आप ले आए इनके पास कोई निशानी, लयकूलन्नल्लज़ीना कफरू, तो जवाबन वो यही कहेंगे जिन्होंने कुफर किया, इन अंतुम इल्ला मुबतिलून, नहीं हो तुम मगर बातिल परस्त। ऐसा क्यों होता है? कज़ालिक यतबउल्लाहु अला कुलूबिल्लज़ीना ला यालमून, यूं ही मोहर लगा देता है अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो हक को नहीं जानते। बहुत ही खूबसूरत आयत है। अल्लाह के नबी ने हर मुमकिन तरीके से पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, लोगों को अकामोडेट करने की कोशिश की, उनके हालात के मुवाफिक जो चीज़ हो सकती थी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ लोग उसके बावजूद भी लाइल्म रहे, उसके बावजूद भी दूर ही रहे अल्लाह के नबी के पैगाम से। अब अल्लाह के नबी के दिल में ख्याल आ सकता था इंसान होने के नाते कि शायद अल्लाह ताला मेरी तो नहीं कोई वजह जिसकी वजह से ये दीन से दूर है। तो अल्लाह ताला कह रहे नहीं, आप सारी निशानियां दिखा चुके, सब कुछ कर चुके, इनको नहीं मानना ये नहीं मानेंगे, बातिल परस्तों को जितने भी दलाइल दे दें वो नहीं मानते। देखिए मुझे इस तरह समझ आती है बात, जब हम वीकडेज की क्लास शुरू कर रहे थे, शुरू की बातें, तो बहुत सारे साथी कुरान की मोहब्बत में चूर जो थे वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारा बहुत दिल है कुरान सीखने को, लेकिन हम सुबह के वक्त में बिजी हैं, हम नहीं कर सकते, आप कुछ शाम का करें। फिर कुछ आवाज़ें वीकेंड की उठी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये क्लासें चलती रहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वीकेंड के मौके भी दिए, लेकिन वो नहीं आए। अभी रिसेंटली मैं एक जगह थी तो दर्स के बाद में हमने बताया कि इस तरीके से ये क्लासेस है, वीकेंड की भी है और एक नया कोर्स जो है हम उधर शुरू कर रहे हैं। तो महफिल में एक खातून थी, वो फौरन बोली, कहने लगी कि आप ग्रीनलैंड में शाम की क्लासें नहीं शुरू कर सकते। यकीन करें उन्होंने ये जुमला बोला ना, मैं अपनी बात मैंने रोकी, फिर मैंने उनको देखा, मैंने कहा मैं एक बात कहूँगा, माइंड तो नहीं करेंगी, इंशाल्लाह एक वक्त तक ऐसा होगा, लेकिन शायद आप उसमें भी नहीं होंगी। मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं वो आइडिया दे के पीछे हो जाते हैं और फिर उनका आइडिया दूसरे फ़ायदा लेते हैं, वो नहीं होते। कहती क्यों? मैंने कहा कि जब हमने ये वीकेंड की क्लास शुरू की थी तो आपको पता है कि हमने नहीं करनी थी ये क्लास शुरू, लेकिन दो लड़कियां थी जिन्होंने कहा वीकेंड की क्लास शुरू करें, हम 10 लड़कियां मिल के आएंगी। तो हमने बैठ के बाकायदा बात की कि 10 इतनी अच्छी सीरियस लड़कियां आ रही हैं, हम शुरू कर लेते हैं। और हम वल्ला ही सोचे बैठे थे कि वो 10 और 2-4 करके कोई 10 से 12 लोग आएंगे हमारे पास, और आज तक वो 10 नहीं आई, इंट्रोडक्शन में भी नहीं आई, और बाकी हाउसफुल है। आपको पता ही है कि वीकेंड पे क्लास कैसे भर जाती है। दुआ करें कि जो मौके हों फिर अल्लाह उसको अवेल करवा ले। अल्लाह कहते हैं कि ये लोग जो आपको कहते हैं ना, आप इनकी जितनी मर्जी वाले इन जित हम भी आ जाते हैं, जितनी मर्जी इनकी मर्जियां मान लें, ये फिर भी कहेंगे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस बात के बाद से वो हमारी अगले दिन की वीकेंड क्लास में आ रही हैं, पहले भी आती हैं, लेकिन बस वो शैतान है ना, पीछे डाल देता है। मैंने कहा आप आ जाए। नहीं मैं आती थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहती मुझे पीरियड्स हो गए थे। तो फिर क्या हुआ? फिर मुझे किसी ने बताया कि इसमें कुरान नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा अब तक ख़त्म नहीं हुए? नहीं वो बस अब नहीं पढ़ा तो फिर छूट गया। मैंने कहा आपको किसने ये बात कही थी? कहती पता नहीं ऐसे। मैंने कहा आप फ़ौरन आए कल। अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन से वो दोबारा क्लास में आ गई। किस तरह से शैतान हमारी नेकियों को उचकता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे अपने ही नफ्स के शर से। अब देखिए जो लफ्ज़ है ना, इल्ला मुब्तिलून, बातिल परस्त, आज के दौर में भी बहुत लोग ये जुमला बोलते हैं, ये नहीं हो सकता, ये आज के दौर में कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप सारे चांसेस उनको दिखे, सारे पैकेज दिखाएं ना, वो कहीं फिट नहीं होते। वो सोचते हैं कि कोई हमारे लिए एक स्पेशल पैकेज होगा, और आप वो भी शुरू करके देखें वो उसमें भी नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि कुरान हमारे लिए एडजस्ट हो, हम उसके लिए एडजस्ट ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं फसबिर इन वाद अल्लाह हक्कुन, बस आप सब्र फरमाएं, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। वला यस्तखिफन्नकल्लज़ीना ला यूकिनून, बस आपको हल्का ना कर दें वो लोग जो यकीन नहीं लाते। आखिरी आयत में अल्लाह के नबी सल्लम को बहुत प्यारी तसल्ली दी। आपको पीछे शुरू में बता दिया सूरत रोम कैसे दौर में नाजिल हो रही है, मुखालफतें, इस किस्म की बातें, मुश्किल बातें, दिस एंड दैट। अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं बस आप जमे रहिए, आप आराम से रहे। कहा नबी को जा रहा है, लेकिन मुराद सारे ही लोग हैं इसमें, कि जितने लोग हैं जिन्होंने इन बातों को नहीं समझा और अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहरें लगा दी। कज़ालिका यतबाउल्लाह, लाइलमी की इतनी बड़ी सज़ा क्या है कि मोहर लग जाती है दिल पे। इल्म दिल की मोहरों को तोड़ता है। जब दिल पे मोहर लगी होती है ना, तो इल्म आहिस्ता आहिस्ता उसको तोड़ता है। जैसे आप सोचे एक सोल्यूशन है ना, किसी पुराने ढक्कन जिसको बंद हो चुका है, नहीं आप खोल सकते ना, फिर उस पर एक सोल्यूशन डालते हैं, फिर उसका जंग पिघलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ से हिलाते हैं तो वो ढक्कन खुल जाता है। दिल भी इसी तरह बंद हुए होते हैं। जब नहीं सुनते थे, अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कि फिर आप इनकी वजह से ढीले ना हो जाएं। ये जो लफ्ज़ है ना यस्तहिफ्फन्ना का, इसको ज़रा देखेंगे तो बहुत ही इंशाल्लाह इसमें से अमल की बातें मिलेंगी हमें। खा फा फा इसका रूट है हल्का होना। अल्लाह के नबी को कहा गया कि आपको हल्का ना करें। अरब लोग जब किसी को बहला फुसला कर गुमराह कर लेते तो कहते इस्तखफ़ा, कि फलां को हमने हल्का कर लिया। लफ्ज़ की कुछ वजाहतें की गई हैं। मसलन इसका एक मतलब क्या है, यानी फलां शख्स ने फलां को बेवकूफ़ बना लिया और उसे राह हक से हटाकर गुमराही के रास्ते पर लगा दिया। जब लोग दब जाते हैं, दुश्मन आपको कमज़ोर ना जाने, आप उनके शोर व गुल में आके दब ना जाएं, उनके लगाए हुए इल्ज़ामों से घबरा कर आप ये काम ना छोड़ दें, मरूब ना हो जाएं, इनकी मजाक उड़ाने, इनके मुजाहरों, इनके जुल्म व सितम से आप ना हल्के हो जाएं, ये जो लालच आपको देते हैं आप उसकी वजह से फिसल ना जाएं, दीन के नाम पर जो ज़ाती मफादात के पीछे लगे हुए हैं कहीं आप उनसे मुसालहत ना कर लें। यानी इतनी प्यारी नसीहत है अल्लाह के नबी के लिए और आज उन लोगों के लिए जो दीन का काम करते हैं। और वो क्या है कि किसी किस्म की तरगीब और किसी किस्म की तरहीब आपको अल्लाह के काम से रोक ना दे। आप देखिए कि नबी सल्लम को मक्का के 13 सालों में हर मुमकिन तरीके से ख़रीदना चाहा, लालच से आपकी शादी करवा दें सबसे खूबसूरत औरत से, आपको सरदार बना लें, आपको सदर बना लें, आपको मजलिस शूरा का मेंबर बना ले। लोग ख़रीदते ऐसे वक्तों में, अल्लाह के नबी किसी जगह काम ना आ सके, उनके किसी इरादे को पूरा ना कर सके। कहा कि आप अपना काम करते रहे, 13 साल मुसीबतें बर्दाश्त की, पलट कर आपने जवाब ना दिया, क्योंकि फसबिर पे अमल हो रहा था, अल्लाह के वादों पे यकीन था। इसी सूरत के अंदर हमने पीछे पढ़ा है कि अल्लाह ताला अपने वादों को सच्चा करते हैं, आयत 47 में गुजर गया था। अल्लाह ताला कहते हैं फंतकमना मिनल्लज़ीना अजरमू, हम इंतकाम लेंगे। ये वादा है जो बंदे को अल्लाह के वादों पे जमा देता है और मुश्किलात में भी पलटता नहीं। अब देखिए, अगर सफ़रे ताइफ में आप सब्र ना करते तो क्या आज सिंध आबाद होता? अल्लाह के नबी को यहाँ जो पैगाम दिया, आज की उम्मत के खतीबों को भी यही पैगाम देने की ज़रूरत है। मत एक्सप्लॉयटेशन करें, गरजदार घन गरज तकरीरें ना करें, फुला मुर्दाबाद के नारे ना लगाएं, अपना काम करते जाएं। इनकी बातों को अपने दिल पर लेकर इस तरह ना रहें कि आपके पैगाम में झोल आ जाए, आप इनके इस कल्चर में असिमिलेट ना हो जाएं। वत्तुलौतुदखिनु फयुदखिनून, ये तो चाहते हैं कि आप थोड़े ढीले पड़ें, बाकी ये ढीला खुद ही आपको कर लेंगे। इसलिए हमने देखा है कि अल्लाह के नबी सल्लम से ज़्यादा ज़िंदगी में मुश्किलात किसी और को ना मिली। सबसे ज़्यादा जान लेने के लिए कोशिशें जिस शख्स की गई वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कातिलाना हमले हुए, लेकिन आप हर वक्त अल्लाह के दीन से जमे रहे। दावत का काम है ही मुश्किलात का काम, ये इस दुनिया का काम है ही कोई नहीं। देखिए, एक बंदे की नज़रें हैं दुनिया की तरफ, आप उसका रुख पलटा के उसको आखिरत की तरफ ले जा रहे हैं, ये कोई आसान काम है? आप कुछ और देख रहे होते हैं, वो कुछ और देख रहे हैं। जो चीज़ आपकी नज़र में नफ़ा है वो उनकी नज़र में नुकसान है, जिसको आप लाजमी कहते हैं वो उसको गैर ज़रूरी चीज़ कहते हैं। अब इन हालात में जो चपकलश होती है उसमें फसबर और ला यस्तखिफन्ना का, ये दो गुर है। अपने अमल में कमी नहीं करनी, अपनी कोशिशों में अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाना, और उनके रवैयों पे सब्र कीजिए। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला खुद ब खुद इनके भी दिलों में ये बात डाल देगा कि हमारी भी यही ज़रूरत है। और आप देखिए, टूट टूट के सितारे फिर जुड़े इस्लाम के दामन में। अबू बकर तो पहले ही दिन इस्लाम के लिए एक खूबसूरत सितारा साबित हुए, लेकिन आखिर में तो इकरमा तक आ गए, अबू सुफियान तक आ गए, इब्ने अब्बास तक आ गए, यानी आखिर जो खुद नहीं आए उनकी नस्लें आ गईं। अबू जहल जिस चीज़ के सामने सीना सपर होके अपनी जान देता दिखता है, इकरमा बाद में उसी दीन का मुहाफिज बना। तो ये फितरत का असूल है, जब एक नस्ल अल्लाह के दीन को नहीं मानती ना, तो अगली नस्ल फिर खुद ब खुद उसके मुख्तलिफ चल पड़ती है। हमें अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है कि हम भी कभी अपने आप को हल्का ना करें। हल्का होना बद अखलाक होकर भी होता है। जो इंसान बद अखलाक होता है ना, वो दूसरों की नज़रों में हल्का हो जाता है, क्योंकि अखलाक का बहुत बड़ा वज़न होता है। फिर धमकियों से मरूब नहीं होना, क्योंकि दलील का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। किल विद काइंडनेस, गुस्से में आता है इंसान तब भी हल्का हो जाता है, बर्दाश्त करें, अपने असूलों पे कायम रहें, अपने आप को बेकाबू ना करें। हालात कुछ भी हों, आप अल्लाह ताला के वादों पे यकीन रखें। और अल्लज़ीना ला यूक़िनून में यकीन की कुव्वत को पेश कर दिया कि जिनको यकीन नहीं है वो लोग पूरी कोशिशें करते हैं कि आपको दीन से बहका दें। अफसोस की बात है कि आज का मुसलमान हल्का हो रहा है, भड़क भड़क कर, नारे लगा कर, मुजाहरे करके। तो असल चीज़ जो वज़न पैदा करती है आपके अंदर, वो इल्म और ईमान है। आज के मुसलमान अपने इल्म और ईमान को बढ़ाते जाएं, इंशाल्लाह दुश्मनों के मुकाबले में हल्के नहीं होंगे। यहाँ पे अब सूरत रोम पूरी हुई, पहली आयत को देख लें गुलिबत रोम, और आखिरी आयत को देख लें ला यस्तहिफन्नकल्लज़ीन ला यूक़िनून, तो गहरा रब्त है कि जो ठंडे स्वभाव वाले होते हैं, जो बर्दाश्त कर लेते हैं, जो मुश्किल हालात में जमे रहते हैं, एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला फिर उनके साथ किए हुए वादों को सच्चा करता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।